Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में मना रहा है, ताकि सभी तपस्या करके अपने संस्कारों में परिवर्तन लाएं, संसार में परिवर्तन आए, एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सके। तपस्या की बहुत सारी चर्चा हमने कल भी की थी और मैंने कुछ वेद शास्त्र हमारी क्या कहते हैं उसमें खंगालने की कोशिश की कि तपस्या के बारे में उसमें क्या कहा गया है, तो बहुत सुंदर सी बातें मेरे हाथ लगी हैं। मैं चाहता हूं कि शुरुआत में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं। मित्रों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि तपस्या से आत्मा पवित्र होती है। तन को तो हम पवित्र कर लेते हैं नहा के, लेकिन आत्मा को जहाँ तक पवित्र करने की बात आती है तो वो तप से ही आत्मा पवित्र होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तपस्या से कर्मों की भी शुद्धि होती है। जो दुष्प्राप्य वस्तु हैं वो तपस्या से ही प्राप्त होती हैं, ऐसा योग वशिष्ठ कहता है। जो दुस्तर है, दुष्प्राप्त है, दुर्गम है, दुष्कर है, वो सब तप के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मन वश में आता है, मन वश में आने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। कितनी सारगर्भित बातें हैं जो वेदों, शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित हैं कि तप करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही आत्म शुद्धि का मार्ग है, यही आत्म कल्याण का मार्ग है और यही वास्तव में उस परम सत्य तक पहुंचने का भी मार्ग है। इसीलिए शायद ब्रह्मा कुमारी इस वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में मना रही हैं और सभी को साधना के लिए, तपस्या के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऐसी सुंदर चर्चा के साथ, बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
ये सारी प्राप्तियाँ भ्राता जी, लाभ या प्राप्ति कह लें, शास्त्रों में भी वर्णित हैं, क्या इनके अतिरिक्त भी कुछ विशेष और प्राप्तियाँ तपस्या के द्वारा?
हाँ, बहुत सारी हैं और ये भी बहुत सुंदर हैं। जैसे सोना तप कर निखर जाता है, वैसे ही आत्मा तप के बिल्कुल कंचन समान पवित्र बन जाती है। कर्मों में शुद्धि आती है, मन चाही प्राप्तियाँ हो जाती हैं, मनुष्य को जो बहुत दुर्लभ लक्ष्य थे वो सहज प्राप्त हो जाते हैं। ये तो सब ठीक का, परंतु एक बहुत बड़ी चीज जो कहीं ना कहीं लिखित तो है, योग तपस्या से मनुष्य के जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। योग तपस्या से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। योग अभ्यास से कर्मों में कुशलता आ जाती है, कर्म सफल होने लगते हैं। जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पथ पर हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। ये योग अभ्यास ही है जो मनुष्य के मार्ग में आए हुए विघ्नों को नष्ट कर डालता है। इससे बुद्धि स्वच्छ होती है, मन न केवल वश में होता है, लेकिन मनुष्य मन में श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करके अपने मन को परमात्म स्वरूप पर एकाग्र कर सकता है। देखिए, ये योग के बारे में चर्चाएं तो बहुत सारी हैं हमारे ग्रंथों में भी, पर ये सबसे सुंदर चर्चा है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना योग है। चित्त की दूषित वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। ये बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो बात है वो ये है कि हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर स्थिर कर दें, उसके प्यार में मग्न हो जाएं, लव में लव लीन हो जाएं, उसके अलावा हमें कुछ दिखाई न दे, उसकी शक्तियां, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगे, इसकी बहुत आवश्यकता है और ये योग से प्राप्त होता है। तो ये योग है,
दोनों एक ही प्रकार की
तपस्या। इसलिए कहा जाता है जो चीज बार बार अभ्यास की, जिसके पीछे हम लग जाएं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो अपनी एजुकेशन में बिल्कुल तल्लीन हो गया एक विशेष लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसकी वो भी तपस्या है। लेकिन ये परमात्म स्वरूप पर स्थिर होने की तपस्या, जिससे आत्मशुद्धि होती है, आत्मा प्योरीफाई होती है, मन शुद्ध होता है, बौद्धिक विकास होता है, ये सर्वश्रेष्ठ।
हम जो अब तपस्या या योग करने वाले हैं, वो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या परमात्मा से प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
हाँ, बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है। संसार में योग अभ्यास लोग परमात्म मिलन, परमात्मा अनुभूति, उसके दर्शनों के लिए करते हैं, लेकिन ये योग अभ्यास ऐसा है जो स्वयं भगवान ने सिखाया कि तुम मेरे से सब कुछ कैसे प्राप्त करो। तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा से सर्वस्व प्राप्तियां हो जाएं हमें, उसकी संपूर्ण शांति हमारी हो जाए, उसका संपूर्ण प्यार हमें अनुभव में आने लगे, उसका संपूर्ण ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए, उसकी संपूर्ण प्योरिटी को हम साक्षात कर लें और उसकी शक्तियों से हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं, बिल्कुल निर्मल होकर हम संसार की सेवा करें, ये इसका लक्ष्य है।
बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर लक्ष्य आपने स्पष्ट कर दिया व्रता जी। मुझे लगता है ये सारी चीजें सभी मनुष्यों को चाहिए, केवल जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनों की बात नहीं है, जैसे आपने कहा सफलता की बात है, आयु दीर्घायु हो जाए उसकी बात है, या निरोगी हो जाए, ये सारी चीजें तो हर एक व्यक्ति की कामना रहती है, लेकिन यही है कि शायद वो योगाभ्यास की ओर या तपस्या की ओर आगे बढ़ता नहीं है।
एक चीज मुझे और इसमें जोड़ देनी है कि हमारे जो साधु संत महात्माएं बहुत समय से मुक्ति की कामना करते आए, विशेष करके उसमें है कि न उन्हें स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न स्वर्ग का राजपद चाहिए, उन्हें चाहिए मुक्ति। तो राजयोग से मुक्ति सहज प्राप्त होती है, क्योंकि राजयोग के बल से मनुष्य के विकार और विकर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा कर्मातीत हो जाती है और वो मुक्त अवस्था का यही अनुभव करने लगती है, और देह छोड़ने के बाद मुक्ति धाम चली जाती है।
प्रताप जी, इसमें इस तपस्या में या इस योग में ऐसा क्या है कि हमें सहज रूप से, जैसे हम निरोगी होते जाते हैं या जैसे आपने कहा कि हमारी आयु बढ़ने लगती है, या और एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, लोग कितनी सारी दवाइयां खा के सोचते हैं कि हम दीर्घायु हो जाएं, लेकिन यदि योग से, साधना से यदि हम दीर्घायु हो पा रहे हैं तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। क्या ऐसा होता है योग करने से कि हम दीर्घायु हो जाते हैं या निरोगी हो जाते हैं?
योग की शक्ति जब परमात्मा से हमें प्राप्त होती है तो वो शक्ति हमारे ब्रेन में भी फैलती है, हमारे देह में भी फैलती है, तो इससे हमारा देह एनर्जेटिक हो जाता है। मुझे बीच में याद आ गई ये बात, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा था। अभी हमारी दादी जानकी जी, जो 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं, उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई, आज ही मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि कई घंटे तक वो इस स्थिति में आ गई जहाँ डॉक्टर समझ लेते हैं कि अब खेल समाप्त हो गया। कहा शरीर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, और वो फिर एनर्जेटिक हो गई और लंदन पहुंच गई पुनः सेवा के लिए। मैं सोच रहा था ये प्रभु प्रसाद उन्हें मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है, क्योंकि बाबा जब आए उनके सिर पे हाथ रख दिया था, एनर्जेटिक हो गई वो एकदम से, जो डेड हो गई थी। तो योग बल भी एक ऐसी चीज है जिसमें हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, विशेषकर हमारे मन में बहुत शक्ति आ जाती है, मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, तनाव से मुक्त होता है। और देखिए, जिस व्यक्ति को बहुत तनाव रहता हो, जिसका मन बहुत निर्बल हो गया हो, जिसको बहुत निगेटिव विचार चलते हो, उसका देह तो दिनों दिन वीक होता जाएगा और वो बिल्कुल निर्बल होता जाएगा, जल्दी उसकी मृत्यु होगी। हम रोज समाचार सुनते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले समाचार आया एक युवक जो बहुत सोचता था, बहुत निगेटिव सोचता था, कोमा में चला गया। कारण कुछ नहीं था, केवल निगेटिव चिंतन। उसको डॉक्टर सावधान कर रहे थे, तुम जाने वाले हो या तो बचो। तो देखिए, योग अभ्यास मन को बहुत प्रसन्न कर देता है, चिंताओं को हर लेता है। हमारे यहाँ आने वाले हार्ट पेशेंट ठीक हो गए जब उन्हें खुशी मिली, जब उन्हें आत्मा का ज्ञान मिला, जब वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। मृत्यु का जो इंतजार कर रहे थे, अब शायद मृत्यु को उनका इंतजार करना पड़े लंबा समय तक। हजारों केस हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट्स के हो चुके हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता जिसका इलाज करते हैं योग बल से, ऑपरेशन के बिना। तो योग से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और एक मोटी सी बात जो लोग बहुत कहते हैं कि हमारी आयु हमारे श्वासों पर निर्भर करती है, तो जब हम अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, तो श्वास की गति बहुत धीमी पड़ जाती है, ये हम सब जानते हैं।
जी जी,
तो उस कारण भी आयु बढ़ जाती है।
वही वो कहा गया है कि शायद गिनती की सांसें आप लेके आए हैं और जितनी सांसें आप ले लेंगे शायद वो जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे, तो सांसों की गति भी कम हो जाती है। दादाजी विशेष करके एक चीज और है, कहा जाता है कि तपस्या से जैसे आप कह रहे हैं कि सफलता प्राप्त होती है, सुख शांति आ जाती है, तो सफलता अर्जित करने के पीछे भी क्या कुछ विशेष है कि हमने साधना की, योग किया और सफलता के पथ पे चल पड़े?
हाँ, देखिए पीछे बहुत सुंदर फिलॉसफी है, क्योंकि ऐसे मैं तो कहूँगा हजारों केस हमारे सामने आ चुके हैं, अनुभव में आ चुके हैं, जिन्होंने योग अभ्यास से सफलता प्राप्त की। और मैं तो ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियों को देखा है जिनका योग अभ्यास बहुत अच्छा था, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में पहुंचते ही अच्छी नौकरी मिल गई उनकी, अभी फाइनल किया भी नहीं था कि बस एग्जाम देते ही हमारे पास आ जाना। MBA कर रहे थे, फाइनल सेमेस्टर से पहले ही उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई।
तो क्या सिद्धांत है इसके पीछे?
कई लोग BSc कर रहे हैं, नौकरी मिल गई, MSc MCA कर रहे, फर्स्ट क्लास नौकरी पहले ही मिल गई। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सिद्धांत ये जो हमारे सभी युवकों को जानना चाहिए, हमारे मन से जो जैसे हमारे विचार होते हैं उसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। अब जो युवक नेगेटिविटी में रहते हैं, जो युवक परेशान मनोस्थिति में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, या जिन्होंने अपनी मनोस्थिति को बुरे संग के कारण बिगाड़ लिया है, उसे नेगेटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है। और जब कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू लेने आता है या साक्षात के लिए उन्हें देखने ही आता है कैसा स्टूडेंट है, तो निगेटिव एनर्जी जैसे ना करा देती है। यही पॉजिटिव एनर्जी यदि हमसे वाइब्रेट आउट होती रहे, हमारी अच्छी मनोस्थिति हो, सुंदर विचार हो, जब हम योग अभ्यास करते हैं तो सब कुछ सुंदर होता है। तो जो व्यक्ति हमसे मिलने आएगा या हमें देखने आ रहा है, मान लो कि ये लड़का ठीक है या नहीं हमारे कार्य के लिए, उसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी यस करा देगी। ये रहस्य इनके पीछे है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही गहरा और सूक्ष्म सिद्धांत है जिसके बारे में शायद लोग नहीं समझते,
नहीं जानते।
और ज्यादातर ये होता रहता है जी कि जब इंटरव्यू के लिए व्यक्ति जा रहा होता है, लड़के या लड़कियां, तो मन में एक भय का भाव लेके जाते हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लेंगे, हमारे जीवन से पूछेंगे, सिलेबस से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, तो ये भय रहता है। और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी रहता है, और शायद ये मेडिटेशन मन को शांत कर देता होगा, और जिस पॉजिटिव एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो एनर्जी उन्हें सफलता प्रदान।
बिल्कुल यही होता है, हम जो कराते हैं जब इंटरव्यू देने युवक जाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बस इस इंटरव्यू से मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया कि आया, विजन देखो, निर्भयता से बड़े उमंग उत्साह से मुस्कुराते हुए आप इंटरव्यू देने जाओ, तो देखिए उन पर जो इफेक्ट होगा इस पॉजिटिव एनर्जी का, वो देखेंगे लड़का अरे तो जोरदार है, वही कहेंगे ये हमारे काम का, ऐसे हुआ है कईयों के साथ, ये हमारे काम का है। उसमें हमने देखा जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज थी वो रह गए, क्योंकि बड़े घबराए हुए थे, कुछ का कुछ बोल रहे थे, आंसर कुछ के कुछ दे रहे थे, और जिनकी कम परसेंटेज थी उनका सिलेक्शन हो गया।
बिल्कुल, तो शायद ये वाली बात हो गई कि जिसका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत हाई है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और मेडिटेशन इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक बात भ्राता जी आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी लगी मुझे कि सदियों से बहुत सारे लोग मोक्ष की कामना करते रहे हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, इस आवागमन से हम छूट जाए, लेकिन तपस्या से शायद यही हम मुक्ति की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, ये कैसे संभव है?
युगों से हमारे आचार्य ऋषि मुनि और बहुत अच्छे तपस्वी, उनकी इच्छा ये थी, और पुराणों में तो दिखाया कि भगवान प्रसन्न हुए और कहा तुम मुक्ति की बात छोड़ो, तुम्हें हम स्वर्ग का राज देते हैं, कहा नहीं हमें तो मुक्ति चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात जानने योग जो एक आम व्यक्ति भी जान सकता है कि जब आत्मा परमधाम से इस धरा पर आई थी तो बिल्कुल स्वच्छ परफेक्ट निर्मल थी, धीरे धीरे ये विकारों का विकर्मों का बोझ उस पर चढ़ता गया, तो हम सबके साथ विकर्म और विकार ये साथ चल रहे हैं, हम इन्हें नष्ट कर डालें तो हमारी मुक्ति धाम की राह स्पष्ट हो जाएगी। तो योग अभ्यास से, योग बल जिसे कहते हैं, उसको योग अग्नि भी कहा जाता है, उससे ये विकर्म और विकार नष्ट होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये विकार नष्ट होंगे हमें यहाँ फील होने लगेगा हम मुक्त होते जा रहे हैं, जैसे किसी का कर्ज उतरता जा रहा हो, जैसे किसी के सिर से बोझ उतरता जा रहा हो, तो वो मनुष्य हल्का होता है ना, चार गठरी सिर पे रखी एक उतार दी हल्का लगेगा, फिर दूसरी भी उतार दी हल्का, चारों उतर गई, वो दौड़ेगा भागेगा। तो ऐसे ये जो विकारों का बोझ है, पाप कर्मों का बोझ है, जिसका मनुष्य को पता नहीं, लोग इन्हें संचित कर्म कहते हैं। इकट्ठे हैं हमारे पीछे विकर्म, जिसको लोग कहते हैं पाप की गठरी सिर पे रखी है, वो सिर पे तो नहीं पर अंदर समाई हुई है। योग बल से ये उतरती जाती है, मन एकदम निर्मल होता जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होता जाएगा, तनाव चिंताओं से मुक्त होता जाएगा, और जीवन में रहते ही मनुष्य ऐसा अनुभव करेगा वो पूरी तरह से बंधन मुक्त है। तो बंधन मुक्त होते ही समझ लें मुक्ति उसके लिए श्योर हो गई।
बिल्कुल। और एक चीज ये भी कही जाती है व्रता जी, हम भी गाते रहे हैं कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, तो शायद आत्मा में जो ये विकारों के दाग हैं, जिसकी लगातार हमारी चर्चा होती रहती है कि क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, या काम वासना ईर्ष्या द्वेष का भाव आ गया है, और इनसे व्यक्ति छूटने की कोशिश भी करता है तो छूट नहीं पाता, इसीलिए उसने स्वीकार कर लिया है कि इसके साथ ही जीना है। क्या तपस्या करने से ये सारी चीजें भी हमसे दूर होती जाएंगी?
देखिए, ये हुआ हमारे तपस्वियों के साथ के क्रोध नहीं छूटा।
जी जी।
तो जिसमें क्रोध है उसको समझ लेना चाहिए वो मुक्ति से बहुत दूर है, जिसमें अभिमान है मुक्ति का द्वार उसके लिए बंद है। जो धन के पीछे भाग रहा है, ऐसे बहुत सारे सन्यासी भाग रहे हैं ना, तो समझ ले मुक्ति उनका संकल्प, उनका उद्देश्य ही नहीं है, या उनको मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। मुक्त माना बिल्कुल आत्मा जैसे निर्लिप्त हो गई है, कर्म कर रही है, कर्म के लेप छेप से भी मुक्त हो गई है, लोगों से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, लेकिन सबसे डिटैच हैं। ये अनासक्त वृत्ति, ये न्यारे प्यारेपन की स्थिति। तो क्या हुआ आज तक तपस्या में कि मनुष्य ने मन को साधने की तपस्या की, मन को शांत करो, इसे दौड़ने न दो, लेकिन विकारों का फोर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देता था। कारण यही कि ये जो तपस्या है ये इनकम्प्लीट रही, अपूर्ण रही। संपूर्ण तपस्या है जब हमारा कनेक्शन सुप्रीम से हो जाए, जो सर्वशक्तिवान है, जो पतित पावन है, तो उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। देखिए, हम उससे जुड़ गए, वो है पवित्रता का सागर। तो जो पवित्र वाइब्रेशंस उससे हमें आएंगे वो हमें पवित्र करेंगे, वासनाओं को समाप्त करेंगे। बिना इसके वासनाएं समाप्त नहीं हो सकती। मन को हमने यदि शांत कर भी लिया तो वासनाएं वहीं की वहीं दब के रह गई, वो अब उछल नहीं रही हैं। इससे मनुष्य ये ना समझ ले कि वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली। दूसरी बात, क्योंकि सांसारिक स्थितियों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है, हम फील्ड में रहते हैं, तो जब हम सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाते हैं तो उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, और मन हमारा इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई विकार आ रहा है, मान लो क्रोध की परिस्थिति बन गई, तो हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली बात नहीं, मन को इतना पावरफुल बना देना है कि मन हर परिस्थिति का आराम से सामना करे, और ये होता है जब सर्वशक्तिमान की एनर्जी हमें आती है। तो ये राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया, जो आज तक किसी को पता नहीं था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, मैंने उसका सब देखा है। आत्मा होना, परमात्मा से जुड़ना, इसकी चर्चाएं नहीं है, केवल मन की वृत्तियों को शांत कर दो, तो यहां तक रह गए। तो इस राजयोग से इसलिए हमें मुक्ति का अनुभव यही होने लगता है, क्योंकि परमात्म शक्तियां हमें मिलती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जिनको परमात्मा से मिलन का आनंद लेना था, उनकी ये इच्छा पूर्ण होती है। जब हम योग युक्त होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास जाकर बैठ सकते हैं, उन्हें अपने पास बुला सकते हैं, तो परमात्म मिलन का अतिंद्रिय सुख हमें भासने लगता है, जो शायद मुक्ति से भी बहुत कहीं बढ़कर है।
इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है व्रता जी, कि हम भगवान के इतने समीप पहुंच जाएं और उनसे बात कर पाएं। तो इससे मुझे लगता है कि मुक्ति से शायद क्या सचमुच बहुत श्रेष्ठ अवस्था है कि हम परमात्मा के अंग संग रहें। तो व्रता जी, केवल क्या ये साधु संतों की ही बात है, या एक आम व्यक्ति जो संसार में रह रहा है वो भी इस मोक्ष या मुक्ति का आनंद ले सकता है अपने कर्तव्यों को करते हुए,
अगर वो इनके पीछे लग जाए? देखिए, बहुत सारी स्थितियां हैं इसमें कि कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना
जी,
कर्म करना और डिटैच हो जाना, कर्म निमित्त भाव से करना, कर्म करके परमात्मा को समर्पित कर देना, ये ऐसे अभ्यास हैं जो कोई भी मनुष्य, चाहे वो गृहस्थ में हो, नौकरियों में हो, अगर वो इनको सीख ले और इसको अपनी साधना बना ले तो ये सब अभ्यास उसके लिए सहज हो जाते हैं और तब उसको योगयुक्त होना भी सरल होता है।
तो आम व्यक्ति भ्राता जी कई बार इन सब चीजों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचता है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है ऐसा वो मानता है, अब इसके लिए उसके पास वक्त भी नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तपस्या वर्ष चल रहा है, हम सब भी साधना और योग का आनंद ले रहे हैं, तो जो हमारे ऐसे भाई बहने हैं जो घर में हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, बहुत व्यस्त हैं, उनके लिए सहज कैसे हो?
इसके अलावा भी मैं इस प्रश्न के साथ कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, नौकरियों के अलावा गृहस्थ में कुछ ऐसे झंझट रहते हैं कि भाई लड़की सीए कर रही है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा, लड़का पढ़ने में होशियार नहीं है, 2 बार 10वीं में फेल हो गया, मुश्किल से पास कराई तो 11वीं में 2 बार फेल हो गया, मुश्किल से पास करा के कह रहे 12वीं भाई बड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मनुष्य के चिंतन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, क्योंकि उसका अपना परिवार है, वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं पर ऐसा नहीं हो रहा है। फिर कर्म क्षेत्र पर किसी को कोई बाधा, किसी को कोई बाधा। कल ही एक व्यक्ति आया कि बस मुझे हाथ में लेटर दे दिया कि बस अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, मैनेजर आदि सब बहुत प्यार करते थे, मैंने पूछा भाई क्यों, मेरे से गलती क्या हुई, मेरी कहीं काम में गड़बड़ हुई कि नहीं, बस ऊपर का दबाव है कि कुछ लोगों को निकाल दो, उसमें आपका भी नंबर आ गया है। ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के सामने आ जाती हैं जहाँ अननेसेसरीली विदाउट एनी रीजन मनुष्य की जॉब चली जाए, अब बेचारे डिप्रेशन में आ जाते हैं युवक। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत काम आती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, पहले मनुष्य को ये सीखना होता है कि वो परमात्मा के प्रति समर्पित भाव अपनाए, अपने कर्मों में निमित्त भाव अपनाए, मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मैं और मेरा जो मनुष्य को बांधता है, जो उलझाता है। देखिए एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, पति है नहीं, अब माँ को तो रहता है मेरे बच्चे, इनको ये करा दूँ वो करा दूँ, पैसे भी नहीं है, कोई नौकरी धंधा भी नहीं है, तो ये मैं उसको भारी करेगा मेरा। अभी वही माता अगर समर्पित भाव अपना ले, नहीं ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको अर्पित, हम तीनों तुमको अर्पित, तुम जैसे चाहे हमें चलाओ, जैसा चाहे हमें हमारा भविष्य बनाओ, बच्चों का भविष्य बनाओ, तो देखेंगी कि द्वार खुलने लगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से सब कुछ सुंदर सुंदर होने लगा। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं, अच्छा योग अभ्यास कर रहे थे, कोई लोग आए, उनके बच्चे को बहुत पसंद किया और कहा हम इसको स्कॉलरशिप देते हैं विदेश भेजने के लिए, बहुत अच्छा, उनके मनचित भी नहीं था, खुश हो गए, वाह घर बैठे पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, 3 साल तक जाओ अमेरिका, ये पढ़ाई पढ़ के आओ, तो ये सब द्वार खुलते। ऐसे ही कर्मों में निमित्त भाव, मेरे कर्म मेरी जिम्मेदारी, मुझे ये करना है मुझे वो करना, इससे हटकर मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ, कार्य समाप्ति पर कार्यों को परमात्मा अर्पित कर देना, ऐसे ही अपने गृहस्थ में कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहना, ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी चीजें मनुष्य को सिखाई जाती हैं। तो आम गृहस्थ में रहने वाले लोग पहले ये सब चीज सीख लें। इम्पोर्टेंट बात ये है उलझे नहीं, और ये जान लें अच्छी तरह, इस बात को नोट डाउन कर लें कि योग बल से सभी उलझने समाप्त हो जाती हैं, हमारा भविष्य का मार्ग स्पष्ट हो जाता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि योग अभ्यास करना चाहिए, इससे सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा।
लेकिन आज जो हमारी दिनचर्या में जो समस्याएं आ रही हैं उन सब का भी समाधान यही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा, थोड़ी सी तपस्या नहीं होगी, तब तक शायद हम ये जो छोटी मोटी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये हर एक व्यक्ति का सब्जेक्ट है, केवल साधकों का सब्जेक्ट नहीं है जो कि संन्यास ले चुके हैं, संत बन चुके हैं, लेकिन हर एक घर में योग की आवश्यकता है।
हाँ, जो भी देखिए राजयोग माना, सभी आत्माएं भगवान की संतान है, वो चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं। मैं तो कहूंगा अभी सभी मुस्लिम्स को भी अपने खुदा से मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, अब ये दीवार तोड़ देनी चाहिए। ये हिंदू या मुस्लिम, इन सब दीवारों को तोड़ कर हम सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और खुदा से मिलने की अब तैयारी करें और ये सीख लें। अपने कर्मों में हम अपने परम पिता के साथ, अपने रूहानी बाप के साथ रह सकते हैं। होता क्या है कि मनुष्य कर्मों में इतना उलझ जाता है कि उसको बिल्कुल भुलाए रखता है, उसे किनारा किए रखता है, लेकिन हम उससे जुड़े रहें, बात करते रहें उससे, हम तुम्हारे लिए ये कार्य कर रहे हैं, ये कर्म तुमको अर्पित। तो निरंतर अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो उनकी शक्तियाँ, उनकी मदद, बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमें हर कर्म में महसूस होता रहेगा, और ये योग युक्त जीवन है, ये एक सिंपल सहज तपस्या है
और हर एक कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है बेटा जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये तपस्या शब्द बहुत ही बड़ा सा लग रहा है कि व्यक्ति अपने कारोबार में रहते हुए, घर में रहते हुए पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने इसे बहुत सिंपलीफाई किया कि हर एक को करने की आवश्यकता है और हर एक कर सकता है। पता जी, एक बात जो आपने कही बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, हर एक धर्म वाले को तपस्या की या योग की या उस परम सत्ता से जोड़ने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव हो? क्या ब्रह्मा कुमारियां इस तपस्या वर्ष में इसके लिए भी कुछ प्रयास कर रही हैं?
हमारे लिए तो सबका आह्वान है। हमारा परम पिता तो सबका परम पिता है, वो हमारा परम पिता नहीं, क्योंकि वो निराकार है,
वैसे भी ईश्वर एक है,
विश्व पिता है, कोई उसे खुदा अल्लाह कहे, गॉड फादर कहे, नाम भिन्न भिन्न दिए जाएं, हमारे यहाँ तो सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का मार्ग है, यानी रूह को रूहानी बाप से मिलाने की ये विधि है। तो सभी इसका आनंद लें, और यही हमारी खुशी है कि सभी धर्मों के हमारे भाई बहने अपने परम पिता से, अपने खुदा दोस्त से मिलन करें और अपने जीवन की यात्रा को सार्थक करें।
क्या सभी धर्म वाले ब्रह्मा जी ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं और आकर के ये योग का अभ्यास करते हैं?
हो ही ऐसे रहा है, बहुत सारे मुस्लिम्स जो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, अब राजयोग सीख रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि कुरान शरीफ में जो कुछ कहा है उसको अब हम जीवन में ला सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जो कुरान शरीफ में कहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो बाइबिल में करने को कहा है, उसको यदि आप करना चाहते हैं तो राजयोगी बनो, आपको उन चीजों के भी गुह्य रहस्य समझ में आएंगे। मुझे अभी अभी एक लेडी ने कांटेक्ट किया जो 40 वर्ष की है, मुस्लिम है, और कहा मैंने जैसे ही राजयोग सीखा और ये ज्ञान लिया, मुझे पता चला कुरान शरीफ में कितनी सुंदर बातें लिखी हैं जिसको हम आज तक समझते ही नहीं थे, उसके गुह्य रहस्य हमें समझ में आने लगे। तो मैं तो अपने सभी धर्मों के भाई बहनों को कहता हूँ कि आइए, आपका स्वागत है, और इस खुदा दोस्त के मिलन के पथ पर आगे बढ़िए।
जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। तपस्या शब्द जो है, भले ही जटिल जैसे मैंने पहले कहा लगता है, लेकिन आप सरल करते जा रहे हैं, इसीलिए चाहेंगे कि इसे और सरल करें ताकि सभी धर्मानुयायी जो भाई बहने हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, सभी इसे करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर पंक्तियां किसी ने कही हैं कि हुआ जो तेरा जिक्र तो हम तेरे सजदे में झुक गए, अब क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर में झुक गए या मस्जिद में झुक गए। वास्तव में धर्म तो हमने यहाँ बनाए हैं, लेकिन ईश्वर वो तो एक ही है, चाहे हम उसे अलग अलग नामों से पुकारें। और ये तपस्या या ये साधना, ये जो योग है जो उस परम सत्ता से जोड़ने वाला है, सबके लिए है, हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हम इंसान पहले हैं, धर्म बाद में है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो सचमुच ये सारी दीवारें गिर जाती हैं, हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है, हम सुख शांति से संपन्न होने लगते हैं, और हम चाहते ही यही हैं कि हम खुशहाल हों, समाज खुशहाल हो, अल्टीमेट हम सबका लक्ष्य यही होता है। और योग से जो इतनी सारी प्राप्तियां भ्राता जी ने आज भी हमसे स्पष्ट की हैं कि ये सारी चीजें हम तपस्या से, साधना से प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना तपस्या के मार्ग पे सब चीजों को भूल के आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाते चलें। तपस्या की इस सुंदर चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।